اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت محمد کے بعد سورت فتح ہمارے سامنے ہے جس کا بنیادی تھیم سکینت، ایمان کا اور اخلاص کا جو تحفہ انسان کو ملتا ہے وہ سکینت کی صورت میں ملتا ہے. اس صورت میں ایک واقعہ ڈسکس ہے سیرت کا، انشاءاللہ سیرہ میں آپ لوگ اس کو پڑھیں گے. صلح حدیبیہ کے نام پر ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا کہ جو بظاہر بہت ناپسندیدہ تھا، لیکن بعد میں بہت بڑی بڑی کامیابیوں کے دروازے اس نے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں فتح مبین قرار دیا. کردار سازی کا اگلا نقطہ کیا ہے کہ بظاہر ناپسندیدہ سچویشن کو قبول کر لینا اس امید پر کہ اس کے بعد فتح مبین ہوگی. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتح مبینا. اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے اللہ درگزر فرمائے، اور تاکہ آپ پر نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے اور آپ کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. آسمان و زمین کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ علیم و حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. آج کے ہمارے بارے کا جو ٹائم ویسٹر ہے نا، وہ بدگمانی ہے. جو لوگ بدگمان ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس نے تمہاری مدد ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہو، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. 3 سیکنڈ تک اس ایک آیت کو امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ناطے سے سوچئے اور اپنا محاسبہ لیتے ہیں. کیا میں بھی شہادت علی الناس کا کام کر رہی ہوں، یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہوں؟ کیا میں بھی لوگوں کو بشارتیں دیتی ہوں، یعنی جو اچھے کام کریں ان کو انکریج کرتی ہوں؟ اور کیا میں لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے اس کے برے نتائج سے آگاہ کرتی ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا میں نے اپنی زندگی کا مشن رسول والا رکھا؟ کیا رسول کا ساتھ دیتی ہوں، اس کی تعظیم و توقیر کرتی ہوں، اور کیا صبح و شام اس کی تسبیح کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارے معاملے آسان کرے. چیز اینڈ پہ آئی ہے، لیکن یہ معاون بہت ہے. اور وہ کیا؟ صبح و شام کی تسبیحات کرنا. تو اپنے لیے کردار سازی کا اگلا نقطہ، اگر اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے تو صبح و شام کی دعائیں آپ کے لیے حرز جان ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کی انشورنس ہے. کیونکہ اس کام میں اتنے خطرے آتے ہیں، اتنے فتنے، اتنی آزمائشیں، اتنے الزام، اتنی غلط فہمیاں، کہ جب تک اللہ سے مدد نہ مانگی جائے کام نہیں ہوتا. اور آپ کو مجھے اس رمضان میں تو خود کو عادی کرنا ہی ہے. کتنی سسٹر جو باقاعدہ ہمیشہ پورا سال صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہیں، بہت کم ہے. کوشش کیجئے، بہت خطرہ ہے. کیونکہ جب ہم صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، اور یہی عادت اپنے گھر والوں کو بھی ڈالنی ہے انشاءاللہ. اب آگے کچھ ایسے کردار کا ذکر ہے، کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو آج کے ہمارے اس پارے کی بھی قابل تقلید شخصیت ہے. تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، پھر سنیں گے تو شاید زیادہ انجوائے کریں گے، اللہ عالم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ سے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر मक्का गए। एहराम बांधा हुआ था, हदी के जानवर साथ थे, कोई हथियार पास नहीं थे, सिर्फ रास्ते के जानवरों से बचने के लिए कुछ छोटे मोटे बचाव की कुछ छुरियां, कोई इस तरह के नेजे साथ होंगे, दैट्स इट। बिल्कुल मक्का के पास ही एक मुकाम है हुदैबिया का, वहां आप रोक दिए गए, अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही, जैसे आप कह रहे कि इमिग्रेशन पे रोक लिया गया। आपने ये साबित करने के लिए कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, क्योंकि उस वक्त मक्का दुश्मनों का इलाका बन चुका था, आपने उस्मान गनी जो आपके दामाद भी थे उनको भेजा, क्योंकि एक तो वो कुरैशी हैं, दूसरे रिश्तेदार भी हैं, तो जाके वो लोगों को बताएंगे कि भाई हम जंग करने नहीं आए, हम तो उमरा करने आए हैं। और अरबों की रिवायत में भी ये नहीं था कि किसी को उमरे से रोक सकें। जब हजरत उस्मान वहां गए, पीछे क्या खबर फैल गई कि मक्का वालों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। उनको शहीद करना, या कह लीजिए कासिद का कत्ल, उस दौर में ऐलान जंग होता था, कोई भी नहीं कत्ल करता था किसी के एम्बेसडर को, गोया कि अब मक्का वाले चाह रहे थे कि मुसलमान हमला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची, देखिए सदमा कितना होगा, दुख कितना होगा, आखिर अपनी बेटी का शौहर भी था। लेकिन बजाय इसके कि उनकी शहादत का गम मनाते रहें और मातम करें, काम पे नजर रखी, सबको जमा किया, 1400 लोग थोड़े नहीं होते, एक दरख्त था वहां बैठ गए, और आपने कहा कि देखो मक्का वालों ने अब हमें चैलेंज किया है, तैयारी तो है कोई नहीं हमारी, ऑफ कोर्स लड़ने की नियत से तो आए भी नहीं है, तो कितने लोग हैं कि अगर अब लड़ना पड़े तो वो लड़ने को तैयार है। और आपने अपना हाथ पेश किया और कहा कि जो जो तैयार है वो अपने हाथ पे हाथ रखता रहे। 1400 के 1400 ने अल्लाह के नबी के हाथ से बैत की, मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी हड्डियां बोटियां भी नहीं वापस आएंगी, पर हम इस हालात में दीन का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उनको तो ये पता भी नहीं था कि ये तो सिर्फ एक अभी कौल इकरार लेना है, ये सब कर लिया, उसके बाद खबर आ गई कि नहीं, वो तो खबर ही झूठी थी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये है अल्लाह के वादे। मेरे आपके लिए ये किरदार क्यों रोल मॉडल है आज के दौर में? हम पहले पूछते हैं हालात बताइए, प्रोग्राम बताइए, तैयारी क्या है, होगा क्या। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, माइंड ना कीजिएगा, या तो दुश्मन से जंग करने के लिए ले जा रहे थे, जान जा सकती थी ना वापस, नहीं जाहिर है कि बगैर हथियारों के लड़ने जा रहे थे, और क्या होगा। हम इतनी खामोश इतात क्या सिर्फ दीन सीखने सिखाने के लिए कर सकते हैं? कल माशाल्लाह आप लोगों की राय ली, चंद लोगों के अलावा सभी के तकरीबन नाम आ गए। आप देखिए कि खुशी की बात यह कि आप में से 100% ने यह कहा है कि हमें आगे मजीद सीखना है, ये 100% स्कोर ही है ना, जो आपका सर्वे फॉर्म है उसकी पूरी रिपोर्ट भी दे सकते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अब आपसे कहा जाए कि बिस्मिल्लाह करें, कितने लोग हैं तैयार हैं, और कितने पूछेंगे कहाँ है, किस वक्त होगा, करीब है, दूर है, फीस है, नहीं है, क्या मतलब है इसका? जहां भी है, जिधर भी है, जिस वक्त भी है, जितनी भी दूर है, जितना भी माल लगे, कितने लोग हैं इसके बाद भी फॉर्म फिल करने को तैयार हैं? हम एक ऐसा कोर्स ऑफर करते हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं, बताएंगे बाद में कहाँ है, ये वादा है कि पैरा शहर के अंदर ही होगा और 24 घंटों में, दिन में ही होगा, रात का नहीं होगा, या वीकडेज होगा या वीकेंड होगा, जो भी होगा। देखिए मैं सिर्फ आपको खुश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता भी क्या होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ये किरदार बन जाइए, सत्य ही खैर। हम इफ्स बट्स, एक्चुअली मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी, क्या मजबूरी, और अब तो आपकी मजबूरियां भी आपके साथ ही आनी है। माशाल्लाह 100% लोगों ने कहा कि बच्चों का भी कोर्स करें, और अब आपने हमें एक नया सोचने का नुक्ता दे दिया कि जो मुझे बताया कि वो एक दरिया में कूदने वाली बात है, 100 बड़ों को पढ़ाना आसान और 10 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है मेरी नजर में, वल्लाहु आलम। तो कहने का मतलब है कि सुन जो लिया, इरादा जो कर लिया काम करने का, तो फिर क्या, फिर कोई कहेंगे आप पढ़ाएंगी कि नहीं, आप इधर रहेंगी कि नहीं, भाई आपको क्या लगे इससे, मेरे नसीब में दुआ करें हो मैं भी आपके साथ वो कोर्स करूं, आपकी हिदायत का इससे क्या ताल्लुक है कि मैं उस कोर्स में हूं कि नहीं, यानी आप चाहते पहले मैं दाखिला लूं फिर आप दाखिला लेंगे, नहीं, आप पढ़िए जरा इन वाक्यात को, और दुआ करें अल्लाह हमें ऐसी तड़प और तलब लगा दे इस हिदायत की कि हम बस मानने वाले बन जाए। इन अल्लज़ीना युबायिउनक इन्नमा युबायिउन अल्लाह। ए नबी, जो लोग आपसे बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे। जिसको ये समझ आ गया ना, फिर वो सवाल नहीं पूछता, वो मानने वाला जहन बन जाता है, वो मनवाने वाला नहीं होता। दुआ कीजिए ऐसे ही हो। इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अल्लाह पर, अल्लाह हमारे सर पे भी अपना हाथ रख ले। अल्लाह बस तो हमारे ऊपर अपनी मदद का हाथ रख ले। अब जो इस अहद को तोड़ेगा, इसकी अहद शिकनी का वबाल इसकी अपनी ही जात पर होगा। अल्लाह को क्या लगे, वो तो पिछली सूरत में कह चुका है, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, ये मुझे पता है कि कोई कुर्सी खाली नहीं रहती, अल्लाह किसी दूसरे को भेज देता है। और जो इस अहद को वफा करेगा, जो इसने अल्लाह से किया है, अल्लाह इन करीब इनको बड़ा अच्छा अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह वादों को पूरा करता है। ऐ नबी, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, अब वो आकर जरूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने अम्वाल और बाल बच्चों की फिक्र ने मशगूल कर रखा था, आप हमारे लिए मगफरत की दुआ फरमाएं। इसकी तो मुझे अरबी पढ़नी चाहिए। अरबी का लफ्ज़ क्या है, अगर आप इस आयत को देख रहे हैं तो? शगलतना अम्वालुना वाहलुना, हमारे बच्चों और घर वालों ने, घर की चीजों ने मशगूल कर दिया था, बस आप क्या करें, फस्तग़फिर लना, हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। जायजा लेना चाहिए इस आयत की रोशनी में। जब अल्लाह की कॉल आ जाए, फौरन अटेंड करनी पड़ती है। पहली बेल पे इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली ज़ादाकुम, दूसरी घंटी ना हो, तीसरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब आगे से कहे नहीं शगलत नाम वालुना फलाना फलाना, तो अल्लाह ताला की बात सुन लीजिए, ये लोग अपनी जुबानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती। याद रखिए, अल्लाह के रास्ते से सिर्फ वही रुकता है जिसको रुकना होता है। कोई मसरूफियत, कोई मशगूलियत बंदे को नहीं रोक सकती। कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहत होती है ना, रास्ते बन जाते हैं। आपने कई तरीके अख्तियार किए, आपने दौरे कुरान कर ही लिया ना, अब देखिए 4-6 दिन रह गए, चला जाएगा। मुझे पता है, मैंने पूरा सर्वे किया कुछ साथियों से कि ये जो आ रहे हैं इनमें से कितने बच्चों वाले हैं, तो जिस बच्ची ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि 2-4 के सिवा सबके बच्चे हैं। क्या ये ठीक है? तो कैसे आई हैं आप सब? कई ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को फुल टाइम स्कूल में रखा, पैसे बहुत देने पड़ते हैं। कईयों ने कुछ किया, किसी ने मियाँ के साथ समझौता किया, किसी ने हमसाई के साथ किया, आ गए ना आप। ये बात है, दुआ करें विल पैदा हो जाए। और ओनली चांस, वन टाइम चांस, पता नहीं लास्ट चांस के फर्स्ट चांस, तो हमेशा याद रखिए कि वही लोग नेकियों में हमेशा चलते जाएंगे जो नेकी की कॉल पे बिस्मिल्लाह कह दें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम तू फारिग हो जा, हदीसे कुदसी है ये, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू फारिग हो जा मेरी इबादत के लिए, मैं तेरे दिल को गिना और तवंगुरी से भर दूंगा। और फिर ऑपोजिट भी है, और अगर तूने मेरे रास्ते को पीछे किया, यानी तू मेरी तरफ ना आया, तो मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा। वाकई भी शगलत ना अम्वालुना वाहलुना होगा, काम ही काम, एक मेहमान गया, दूसरा उठ गया, दूसरा आया, कोई शादी आ गई, गम आ गया, अब दावत आ गई, इन्हीं खेल खिलौने में गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते रहोगे। और फरमाए तेरे दिल को मैं गम से भर दूंगा, फक्र से भर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये कॉल चाहे नमाज की हो, जिहाद की हो, कुरान की हो, तो याद रखिए कमिटमेंट करनी पड़ेगी और निभाना पड़ेगा रिस्क लेकर, इस उम्मीद पर कि ठीक है अल्लाह के रास्ते में कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या होगा, दुनिया में रहेंगे ना, कुछ भी नहीं होता। और कुछ हुआ आपको दौरे कुरान के दौरान? और अल्लाह ना करे, अल्लाह सलामत रखे, आपके बच्चों को कुछ हुआ नुकसान? जिसके रास्ते में आप निकले हैं, क्या वो नहीं हिफाजत करेगा तो कौन करेगा? कई रिस्क ले लेकर पैसे कमाने जाते हैं, जॉब्स करने जाते हैं, दुनिया के कोर्सेज करते हैं, लैंग्वेज कोर्स सीखते हैं, तो क्या आपके मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अल्लाह निकल पड़ी तेरे रास्ते में, देखती हूँ क्या होगा आगे, जो होगा देखी जाएगी। तो याद रखिए कि बस ये सर मांगिए जो यूं झुके, ये सर खींचना या टेढ़ा मेढ़ा घूमना, ये खतरे में डलना है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, इनसे कहना अच्छा यही बात है, तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या नफा बख्शना चाहे तुम्हारे अमाल से, तो अल्लाह ही बाखबर है। यानी फिर ज्यादा बात ना करो, छोड़ दो उनके मामले को अल्लाह पे, अल्लाह जाने वो जाने, तुम्हें उनकी ज्यादा फिर फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह की नजर बंदे के ऊपर है। मगर असल बात तो वो नहीं जो तुम कह रहे हो। क्या कह रहे थे? घर और घर वालों ने मसरूफ कर दिया। अल्लाह करे ये बात नहीं है असल में, रियल रीजन ये नहीं है, तो फिर रीजन क्या है वो अगले हिस्से में। बल्कि तुमने यूं समझा, और देखिए तुम कह के तो अल्लाह ऐसे लग रहा है मुझे कह रहा है, डायरेक्ट अल्लाह ने ऐसे जुमले बोलने वालों को मुखातिब कर दिया इस आयत में। तुमने यूं समझा कि रसूल और मोमिन अपने घर वालों में हरगिज पलट कर ना सकेंगे, ये वही मर खप जाएंगे, हम क्यों कूदें? दुश्मनों के इलाके में जा रहे हो उमरा करने, क्या शौक है इस उम्रे का, घर बैठो। हालांकि देखिए ये मैदान जंग की भी नहीं उम्रे की बात थी। याद रखिए अल्लाह बंदे को चारों तरफ से ठोक बजा के देख लेता अपने रस्तों में, इसीलिए कमजोर दिल के लोग ये काम नहीं कर सकते। और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा, और तुमने बहुत बुरे गुमान किए, और तुम सख्त बदबातिल लोग हो। अब वो सारे नेगेटिव जुमले जो बोले होंगे उसको जहन में ले आए, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे कर सकते हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमें भी तो दिया है, और हमारी असल जिम्मेदारी तो ये है, और रोजे की हालत और फुलानी हालत, कहाँ बैठ के तुम बातें करते रहो, तुम्हारी नसीब में बातें करना थी। लेकिन देखो अल्लाह ने क्या मुकाम दिया उन लोगों को, और वो क्या है, फरमाया वमल्लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान न रखते हों, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है, आसमान और जमीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे सजा दे, और वो गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। जब तुम माले गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग जरूर तुमसे कहेंगे हमें भी अपने साथ ले चलो, यानी जहां जाने में फायदा नजर आएगा तो जिद करके साथ जाएंगे। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ कह देना तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते। जो नहीं गया हुदैबिया के सफर पे वो अब खैबर के और दूसरे सफरों पे भी नहीं जाएगा। अल्लाह पहले ही ये फरमा चुका है। ये कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो, नहीं असल में तुम हमसे जलते ही बहुत हो। हालांकि ये बात हसद की नहीं बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना अन करीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोरावर हैं, तुमको इनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। इस वक्त अगर तुमने हुक्मे जिहाद की इताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, फिर अगर तुम उसी तरह से मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। यानी अल्लाह फिर एक और मौका ले आएगा कुछ साल में, फिर देखेगा तुम क्या करते हो। हाँ अगर अंधा लंगड़ा और मरीज जिहाद के लिए ना आए तो कोई हरज नहीं, जो कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह इसे इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा इसे दर्दनाक अजाब देगा। ये आने वाले वक्त के खतरों की तरफ माइल किया जा रहा था। देखिए ये तो बातें ही छांटते रह गए ना, और अल्लाह ने क्या कह दिया अगली आयतों में, लकद रदी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज युबायूनक तहत शजरा, अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया। जिन्होंने, मोमिन कौन थे, जिन्होंने पहली कॉल पे लब्बैक कहा, जिन्होंने कहा ठीक है हम अवेलेबल हैं हम करेंगे। कौन है जो मजबूरियों में नहीं है, कौन है जो मुश्किलात में नहीं है? आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं अगर मैं गिनूं तो आप में से हर एक की यकीन करें अलग और जेन्युइन मजबूरी होगी, लेकिन आपके शौक ने रिस्क लेने पे माइल किया, और आप में से कुछ की तो मजबूरियां इतनी जेन्युइन थी कि जिनका मुझे पता था कि मेरा दिल लरस जाता था सोच के, ये कह रही है करना कोई नहीं होना कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने करा लिया, अल्लाह आगे भी करा लेगा। आजजी के साथ कहें कि अल्लाह इसी तरह कराता रहे। जिस तरह इतने सुकून से ये रमजान का प्रोग्राम हो गया है, ए अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी इसी सुकून के साथ इस किताब की छाव में गुजर जाए, लेकिन आखिर में ये पुकार सुना देना कि लकद रदी अल्लाह, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। इसीलिए सहाबा को रदी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे इनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए इसने उन पर सकीनत नाजिल फरमाई। ईमान और इखलास का तोहफा सकीनत। लिखिए अगली चीज 11वां नुक्ता है गालिबन, किरदार में सकीनत लाएं। एक मोमिन एक मुस्लिम पुरसुकून होता है, हर वक्त हाइपर होना, हर वक्त उछल रहे हैं कूद रहे हैं तड़प रहे हैं नहीं, अंदर सुकून, ठहरो बैठो तो सही आराम से बात करते हैं, और ये सुकून मिलता ही तब है जब आप अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी इनत का तोहफा दे दे। इनको इनाम में करीबी फतह बख्शी और बहुत सा माल गनीमत इन्हें अता कर दिया जिसे वो अनकरीब हासिल करेंगे। वो कोई माल लेने गए थे, वो तो जब उमरा करने गए थे, लेकिन देखिए वापसी पे अल्लाह क्या तोहफे देकर भेज रहा है। जैसे कोई कहीं जाकर वापस आए तो हमारे कल्चर में उसको तोहफे देते हैं, उस लिहाज में देखिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बगैर तलब के इतना माल दे दिया। अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। अल्लाह तुमसे बकसरत वाले गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। यानी अल्लाह की यह अता को खत्म थोड़ी हो जानी है, ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। इसके आगे तुम देख देख के हैरान हो गए कि तुम्हें ये मिल क्या रहा है और कहाँ से मिल रहा है। असल बात है कि सकीनत, सुकून, अल्लाह की रजा पे राजी। फौरी तौर पर तो ये फतह इसने तुम्हें अता कर दी और इन लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जो अबू बकर और उमर के दौर में भी होंगी। और बड़ी फतूहत हुई इस्लाम की। अल्लाह के नबी को तो नहीं पता था कि 120 मुल्क मुसलमान बन जाएंगे। अराउंड 120 के करीब भी मुल्क है ना, और अभी आगे पता नहीं कितने होने हैं। आपको क्या पता है और मुझे क्या पता है। अल्लाह ने क़यामत तक की सारी गनीमतों को इसमें गिनवा दिया कि मत सोचो कि मक्का ही फतह हो रहा है, तुम सीधे हो के चलो तो सही। अल्लाह ने तुम्हारे से इतने काम लेने हैं कि तुम कर कर नहीं थकोगे और अल्लाह तुम्हें दे दे के नहीं थकेगा। और ये भी अल्लाह का तोहफा है। देखिए जिसका काम पसंद आ जाता है ना उसको मजीद ऑर्डर मिलता है। किसी का सैंपल एक्सेप्ट हो गया तो ऑर्डर आया, भेजा माल तो बड़ा खूबसूरत था, वो कंपनी अब और भी ऑर्डर भेजेगी। फिर फैक्ट्री पहले सुबह चलती थी, फिर शाम भी चलेगी, फिर रात भी चलेगी। खुश होता है वो कि रोता है? बताइए, अच्छा बिजनेसमैन रोता है ज्यादा ऑर्डर आने पे? उनकी तो हंसी नहीं खत्म होती। फैक्ट्री पे गए, काम पे गए हैं जी, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आए, ले लीजिए इसको अपने इस रास्ते में। आपने एक छोटा सा सैंपल दिया अल्लाह के रास्ते में, पसंद आ गया, अल्लाह कहता है अब मैं देखो तुम्हें कितने ऑर्डर देता हूँ, तो क्या रोएंगे? वक्त ही नहीं मिलता। किसने कहा था कल, किसको गलती लगी कि वक्त ही नहीं मिलता? माशाल्लाह आप सब ने कल सारे दिन में एक बार भी नहीं कहा कि वक्त नहीं मिलता। आपने कह दिया था, मुंह से निकल गया था। देखिए वक्त अल्लाह को देकर तो देखिए बरकतें कितनी आएंगी। और अल्लाह ने इनको घेर रखा है, हर चीज पर वो कादिर है। ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते। नोट करें, ये तो हुई नहीं जंग, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये बगैर हथियारों के भी कूद जाते ना मक्का में, तो हारना मक्का वालों ने था। मैं कहती हूँ अल्लाह के वादों को समझिए, अल्लाह के वादों को खुदारा समझिए, आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे और कोई हामियों मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में इनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ इनसे रोक दिए, हालांकि उन पर तुम्हें गलबा आ कर चुका था और जो कुछ भी तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और हदी के ऊंटों को इनकी कुर्बानी की जगह पर ना पहुंचने दिया। ये छोटी बात थी कि अल्लाह के घर से किसी को रोका। वलौल रिजाल मुमिनून वनिसा मुमिनात, और अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते और ये खतरा ना होता कि अनजाने में तुम इन्हें पामाल कर दोगे और इससे तुम पर हर्फ आएगा, तो जंग ना रोकी जाती। रोकी वो इसलिए गई ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। वो मोमिन अलग हो गए होते तो अहले मक्का में से जो काफिर थे इनको हम जरूर सख्त सजा देते। समझ आ रही है आयतें? यानी ये हुदैबिया के मौके पे जंग हो जानी थी, लेकिन वो थोड़े से मुसलमान जो मक्का में थे उनकी वजह से नहीं जंग हुई, क्योंकि अभी उन्होंने ईमान छिपाया हुआ था। यही वजह है कि जब इन काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमीयत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई। अल्लाह हमें भी फरमाए। और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा कि वो ही इसके ज्यादा हकदार और इसके अहल थे। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब क्या हुआ, वापिस आ गए, लेकिन लकद सदकल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक। फिल वाकई अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। इंशाअल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल हो गए, अपने सर मुंडवाओगे और बाल तुरशवाओगे और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो इस बात को जानता था जिसे तुम नहीं जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले इसने ये करीबी फतह तुमको अता फरमा दी, और वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा ताकि इसको पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। तो ये गलबा इस्लाम हुआ कैसे? उन प्यारे साथियों के जरिए जिनका तस्करा अब आखिरी आयतों में है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए कलमे का आधा हिस्सा ही है। कुछ लोग कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा कलमा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कितनी दफा हम पढ़ चुके, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्ला हुआ, यहाँ आ गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो इनके साथ हैं वो कुफार पर सख्त और आपस में रहीम है। इसको हाईलाइट करें, अल्लाह के नबी के साथी सहाबा या आपकी टीम के लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे, और कुफार के मामले में अपने अकायद और अपने नजरियात में बड़े सख्त थे। क्या जुम्मत मुस्लिम ऐसी है? हम अपनों को तो काट खाते हैं, गैरों के हम गुनगाते हैं। एक अच्छी टीम वो होती है जिसमें हर टीम मेंबर दूसरे के मामले में रहीम हो, उसकी खुशी मेरी खुशी, उसकी कामयाबी मेरी कामयाबी, उसकी रजा मेरी रजा, उसका गम मेरा गम। जब तुम इन्हें देखो तो इन्हें रुकू सुजूद और अल्लाह के फजल और इसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुजूद के असरात इनके चेहरों पर मौजूद हैं, आजजी हम्बलनेस जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। ये है इनकी सिफत तौरात में और इंजील में। इनकी मिसाल यूं दी गई कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, यानी शुरू में इस्लाम आया और बड़ा कमजोर था, पहली कोंपल अबू बकर सिद्दीक, अली और खदीजा और जैद, फिर इसको तकवीयत दी कब उमर मुसलमान हो गए, फिर वो गुदराई, फिर बड़े बड़े सहाबा आने लगे इस्लाम में, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। इस्लाम की खेती तैयार है, काश्त करने वालों को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खुश करती है। खुश होते थे अपने सहाबा को काम करता देखकर। कभी पढ़े जरा गजवाए खंदक में खंदक होते हुए आप कैसी अटकलियां कर रहे थे सहाबा के साथ, खुशी खुशी अल्लाह मलाइशा अल्लाइशा आखिरा। खुशी तो होती है बीज डालने वालों को फसलों को तैयार देखकर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उनको देखकर परेशान भी थे। कौन? ताकि कुफार इनके फलने फूलने पर जले। इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने इनसे मगफरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी की कामयाबी अच्छे साथी थे। देखिए हजरत मूसा का इतना तस्करा है कुरान में, लेकिन हजरत मूसा दीन को नाफिज नहीं कर सके थे। तबलीग और चीज होती है, ये ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तबलीग, निफास क्या इस सोसाइटी का रंग बदल दें वो मुश्किल है, उसके लिए अच्छे साथियों की जरूरत होती है। अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह ने ये एक तोहफा रखा था कि आपको साथी बड़े प्यारे मिले। और याद रखिए जहां अच्छे साथी मिल जाते हैं वहां दीन का पौधा लग ही जाता है, जितनी मर्जी मुखालफत और बल्कि मुखालफतों में ज्यादा जमता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में फसलें ज्यादा पकती हैं। तो यकीन करें कि ये पूरा पारा हमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, ये इतना खूबसूरत है। और चूंकि सीरत मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मुझे पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए हमेशा ही कमी का एहसास होता है, लेकिन आपके मेरे लिए इसमें किरदार साजी के चंद नुक्ते आखिरी आयतों में थे। नंबर एक, साथियों से मोहब्बत करना, साथ काम करने वालों से मोहब्बत कीजिए। किस किस्म की मोहब्बत? उनको अपना और अपने आप को उनका समझे। फिर अगली बात देखिए, रातें क़याम और सजदों में। किरदार बनता ही तब है जब रात का कुछ हिस्सा अल्लाह से बातें करके गुजारा जाए। सारे गिले शिकवे वहां कर लें, वहां रो लें, वहां धो लें, वहां तकलीफें कर लें, वहां चुगलियां कर लें, वो नहीं माइंड करता, लेकिन बंदों के साथ ये मामला नहीं करना। और फिर अगली बात क्या है, चेहरों पे आजजी के निशान, बोलने में आजजी, चेहरों पे एक अजीब सी नरमी मिठास। ऐसे बंदे को कभी कोई इंसान डिसलाइक नहीं करता, और अगर चेहरे पे गुस्सा तेवरी और बड़ेपन के असरात हों तो कोई भी उसके साथ नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा ही बना दे। चंद आयतों की तिलावत सुनते हैं।
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
الله أكبر الله تعالى ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے جیسے صحابہ کرام تھے رشک آتا ہے ان کے اوپر کیا چیز نے ان کو بدلا تھا قرآن کی سچی تعلیم نے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے